तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने मुंजारण्य में जो अग्नि थी उसका शमन कर दिया, उसको पी लिया। फिर सारे ग्वाल बाल अपने गायों को लेकर वापस आ गए वृंदावन, और उन्होंने आकर सारी बातें बताई जैसे कि हर रोज बताया करते थे। और सारे ब्रजवासी को पता चल गया कि अरे कृष्ण ने आज इतना भीषण दावानल पी लिया, जैसे कि पहले उसने कालिया के दमन के दिन उसी शाम को पिया था, आज दूसरा जंगल में आग हो गया, बहुत बड़ा आग पी लिया आसानी से। और फिर उसके पहले बलराम ने प्रलम्बासुर नाम के भीषण असुर का वध किया। ये बातें फैल गई जैसे आग फैलती है ना, जैसे दावानल फैल जाता है, हमने सुना है, पढ़ा है भागवत में भी, पिछले दो दावानल हुए कैसे फैले, लपक लपक के जल्दी जल्दी से, बस क्षणों के भीतर सारे जंगल में आग फैल गई थी। अंग्रेजी में कहावत है कि कोई बात अगर बहुत महत्वपूर्ण खबर है तो कहते हैं स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, मतलब बहुत तेजी से फैल जाती है वो बात, जैसे कि दावानल फैलता है। तो उसी प्रकार से दावानल को शमन करने की बात सारे ब्रज में दावानल की तरह फैल गई, मतलब जल्दी जल्दी पहुंच गई सबके पास, और सारे ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, अरे तुम्हें मालूम है कृष्ण ने दावानल पी लिया दोबारा, और बलराम ने एक बड़े असुर का वध किया जिसने वेश बदल के ग्वाल बाल के रूप में आया था। और सारे लोग चर्चा करते रहे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी हुआ करती थी दिन भर कि ब्रजवासियों को और किसी विषय के ऊपर बात करने का समय ही नहीं मिलता था, कोई चांस ही नहीं मिलता था, तो बस कृष्ण लीला ही चलती रहती थी। और फिर ब्रजवासी भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस निष्कर्ष पर ग्वाल बाल भी थोड़ा समय पहले पहुंचे थे कृष्ण के बारे में, और वो क्या था कि कृष्ण एक देवता होंगे अवश्य, नहीं तो देवता नहीं होते तो ऐसे ऐसे असाधारण अद्भुत कार्य कैसे कर पाते। कोई दावानल पीना कोई साधारण बात है क्या, कोई योगी भी नहीं कर सकता, तो अवश्य ये देवता होंगे। फिर सुखदेव गोस्वामी विषयांतर करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से समय बीतता गया। अभी याद रखिए ग्रीष्म ऋतु था, ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। तो धीरे धीरे ऐसे भगवान कृष्ण की लीलाएं चलती रहीं, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गया और वर्षा ऋतु आरंभ हो गया। वर्षा ऋतु में क्या दिखाया जाता है, पहले तो बादल घने हो जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। तो ठीक ऐसे होने लगा। और फिर सुखदेव गोस्वामी करीब करीब 20-25 ऐसे श्लोकों में इस वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, और हर एक श्लोक में वो जो वृंदावन में दिखाई पड़ता है वर्षा ऋतु के संबंध में उसकी तुलना किसी एक और चीज से, वस्तु से, सिद्धांत से करते हैं। तो सबसे पहला वर्णन वो कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु में क्या दिखाई दिया वृंदावन में, कि जो बादल हैं वो आकाश को ढक रही थी। बादलों का रंग कैसे होता है, काला सा होता है ना, सांवला होता है बरसात के बादल, कृष्ण भगवान के शरीर की कांति भी वैसे ही है। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, राजा कुरुशेखर वर्णन करते हैं भगवान का, जय जयकार जय हो उस भगवान श्री कृष्ण का जिनके शरीर की कांति मेघ के कांति की तरह है, श्यामल वर्ण है उनका और उनका अंग भी कोमल है। तो उसी तरह से ये बादल का रंग, तो ऐसे बादल वर्षा के ऋतु में आ गए वृंदावन में और उन्होंने आकाश को आसमान को ढक लिया। कैसे ढक लिया, जैसे कि प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण रजगुण तमगुण आत्मा को ढक लेते हैं। देखिए अभी हर एक श्लोक में ऐसे सुंदर वर्णन करेंगे, हमें इतना आनंद आ रहा था पढ़ते पढ़ते कि हम सोच रहे थे अभी प्रवचन देना वगैरह, अभी कितना पढ़ेंगे तो बस आनंद आ रहा था जस्ट पढ़ते पढ़ते। और प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर टीकाएं लिखी हैं इसके ऊपर। तो जब तीन गुण आत्मा को घेर लेते हैं तो आत्मा का जो स्वभाव रहता है, जो स्वरूप रहता है, वो प्रकट नहीं हो पाता है। आत्मा अपने आप को भूल जाता है, फिर आत्मा ये तीन गुणों के वश में आ जाता है। बादल के साथ साथ बिजली भी होती है और फिर बिजलियों का गरजना भी होता है, थंडर। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो बिजली है ये सत्वगुण के बराबर है, जो बादलों के गरजने की आवाज है वो रजोगुण के बराबर है, और जो बादल हैं जो काले हैं वो तमोगुण के बराबर है, और इन तीनों की वजह से जो आसमान है वो ढक जाती है। जिस तरह से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से आत्मा ढक जाती है। दूसरी बात क्या देखते हैं शुक्रदेव गोस्वामी? पहली बात तो उन्होंने देखा कि बादल उन्हें आसमान को ढक लिया है, ये पहला उनका ऑब्जर्वेशन है, पहली बात जो वो देख रहे हैं निसर्ग में, वृंदावन के ऋतु, वर्षा ऋतु में। दूसरी बात वो देख रहे हैं कि अभी सूरज जो कि 8 महीने पृथ्वी से पानी खींचते आया ऊपर, अभी वो खींचे हुए पानी को बरसा रहा है, छोड़ रहा है। सही बात है ना? गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में जब भी सूरज चमकता है तो सारे पानी को ऊपर खींच लेता है, और ऊपर खींच के पानी का परिवर्तन किस रूप में करता है? बादल के रूप में कर देता है। तो बादल भी सूर्य का कार्य है, फिर सारा जो पानी है वो बादलों के रूप में उसको स्टोर किया जाता है, उसको रखा जाता है। ये प्रकृति के पानी के टैंक हैं, वाटर टैंक। हमारे घर में हम लेते हैं ना, लेकिन हमें इसकी जरूरत होती है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, पानी ऊपर लाने के लिए। कितना तकलीफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमें जाके फिर नीचे से लाना पड़ता है, फिर पानी पहले नीचे से ऊपर ले जाते हैं टैंक में, फिर टैंक में से हम लेते हैं घर में। लेकिन देखिए भगवान के पानी ऊपर खींचने का सिस्टम कितना अच्छा है, भगवान का स्टोरेज सिस्टम कितना अच्छा है ऊपर। भगवान केवल सूरज से पानी को खींच लेते हैं, उनको कोई बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। फिर एक बार ले जाते हैं तो वहां पर ऐसे टंकी में रखते हैं। सोचिए थोड़े बादल की चमत्कार सोचिए। बादल है क्या? उसमें कोई दीवार नहीं है, कोई लोहा नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं है, सिंटेक्स टैंक वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। आप खड़े रहता है वहां और हवा में वो तैर रहा है, लेकिन उसका वजन क्या है? बहुत भारी वजन है। इतना सारा पानी है उसमें, इतना पानी है। अब ये एक 200 लीटर का टैंक जो है, हम उसको उठा सकेंगे? नहीं उठा सकते। लेकिन एक बादल में कितना पानी है जो कि एक शहर को पानी से भरा सकता है, और वो आसमान में तैर रहा है। भगवान ने ऐसे टंकियां बनाई, ऐसे व्यवस्था की है। तो 8 महीने ये बादल तैयार होते रहते हैं, सूरज खींचता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ऋतु, वर्षा ऋतु के समय फिर ये पानी बरसने लगता है। ठीक उस तरह से कि जैसे एक राजा अपनी प्रजा से कर वसूल करता है, नाना प्रकार के कर होते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, बहुत सारे के टैक्स होते हैं, कर होते हैं। और फिर क्या होता है, जब प्रजा को आवश्यक होता है उस समय प्रजा के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए उसी धन का प्रयोग करता है, जैसे उद्यान बनाने के लिए, यहाँ रास्ते बनाने के लिए वगैरह, अलग अलग चीजों के लिए, समाज के भलाई के लिए वही धन का इस्तेमाल करता है एक राजा। तो कर केवल प्रजा के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और कर ऐसे उसूल करना चाहिए जितना कि प्रजा दे सके। लेकिन कलयुग में जैसे कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन आता है, सरकार चोरों की सरकार होगी सब जगह, ऊंचे ऊपर से लेकर नीचे तक। आजकल हम देखते हैं कि हर एक सरकारी दफ्तर में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग पैसे खाते हैं, साधारण आदमी से भी पैसे चूस लेते हैं, ये दुर्भाग्य है। ऊपर तक मंत्रियों से लेकर नीचे तक, ये कलयुग का अभी जो भविष्यवाणी है वो अभी सत्य निकलते आ रहा है। और फिर कर ज्यादा से ज्यादा वसूल कर लेंगे, प्रजा को हैरान करेंगे। हैरान करके लोग इतने तंग आ जाएंगे कर दे देकर कि वो आखिर में भाग जाएंगे, घरों से जंगलों में पहाड़ों में भाग जाएंगे। सरकार इतना हैरान करेगी। और फिर जो कर निकलता है ज्यादा से ज्यादा, वो कर जाता कहां पे है? अलग अलग लोगों के जेबों में जाता है, प्रजा के हित के लिए नहीं जाता। लेकिन वास्तव में सूरज की तरह होना चाहिए। सूरज निकालता तो है पानी, लेकिन फिर प्रचुर मात्रा में देता भी है। उसी प्रकार से राजा को, नेताओं को चाहिए कि वो जब कर वसूल करे वो सही तरह से प्रजा के कल्याण के लिए इस्तेमाल करे। तीसरी बात जो सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं वृंदावन के वर्षा ऋतु में, कि जो बादल हैं, जो घने बादल हैं, वो एक जगह रहते नहीं है। वर्षा ऋतु में तेज पवन चलते हैं और ये तेज पवन बादलों को भी इधर से उधर ले जाती है, जगह जगह ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि पवन का उद्देश्य यह है कि बादल एक जगह रहे तो बारिश एक ही जगह होगी, तो बारिश तो सब जगह होना है, इसलिए पवन बादलों को अलग अलग जगह में ले जाते हैं ताकि जगह जगह में बारिश हो जाए। और ठीक उसी तरह से ये बादल हैं कि जैसे एक बहुत कृपालु व्यक्ति रहता है या एक बहुत दानी व्यक्ति रहता है, ये दानी व्यक्ति या कृपालु व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना धन जो है वो आवश्यकता के समय सबको बांट देते हैं। तो ये बादल ऐसे हैं जैसे कि बहुत धनी व्यक्ति अपने खजाने को खाली कर देता है, जैसे जब कोई तकलीफ होती है, अकाल होता है, कुछ आफत आती है समाज में, तो अपने तिजोरी को खाली करके सब प्रजा में बांट देता है उनके भलाई के लिए। तो इतने उदार हृदय के हैं ये बादल, अपने आप को खाली कर देते हैं, जितना भी पानी उनके अंदर है वो पानी बरसा देते हैं सारे प्राणियों के कल्याण के लिए। और इस सिलसिले में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं महाराज दशरथ का उदाहरण। दशरथ महाराज जब अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करते थे तो वो ऐसे थे जैसे कि एक किसान जो कि जंगली जो पौधों को, उपलताओं को, उपशाखाओं को उखाड़ देता है खेत से। जब किसान खेती करता है और बीज बोता है तो बीज कोई एक वस्तु का रहता है, जैसे चावल का हो, लेकिन जैसे चावल का पौधा बढ़ता है तो साथ साथ क्या बढ़ता है, और जंगली सब चीजें भी बढ़ने लगती हैं जो कि उस चावल के पौधे को खा जाएंगे, मतलब उसे पानी खींचना नहीं देंगे। तो इसलिए किसान को चाहिए कि वो चीजें निकाल दें। तो दशरथ महाराज जब अपने शत्रुओं के साथ में युद्ध करते थे तो वो ऐसे थे, मतलब बहुत कड़क, शत्रुओं को उखाड़ के फेंक देते थे, मतलब इतने शक्तिशाली योद्धा थे। लेकिन जब समय आता था दान देने के लिए तो वो उस तरह से दान देते थे जैसे कि बादल वर्षा देते हैं। बादल सब जगह वर्षा देती है, उसी तरह से दशरथ महाराज अपने प्रजा में भर भर के दान दिया करते थे। रामायण में वर्णन आता है कि दशरथ महाराज कैसे ब्राह्मणों को दान देते थे। प्रभु रामचंद्र जी ने भी वनवास जाने के पहले हर एक ब्राह्मण को दान दिया, उनको धनी बनाकर छोड़ दिया। तो बादल ऐसे होते हैं। बादल एक ऐसे दानी व्यक्ति की तरह भी होते हैं जो कि जब दान देते हैं ये नहीं देखते हैं कि कोई योग्य है या कोई योग्य नहीं है। जैसे बादल जब बरसते हैं तो रेगिस्तान में भी बरसते हैं और ऐसे भी जगह बरसते हैं जहां पानी बहुत ज्यादा है, पत्थर के ऊपर भी, खेत के ऊपर भी। तो ये है बादलों का स्वभाव, बड़े उदार हृदय के होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। फिर और क्या बात सुखदेव गोस्वामी देखते हैं वृंदावन में वर्षा के ऋतु में, कि पहले जो पृथ्वी माता ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल सूख गई थी, घास कुछ नहीं था, ऐसे लग रहा था कि एक रोगी व्यक्ति है, और अभी पृथ्वी माता में जो खेत है वो कैसे लग रहे हैं, हरे भरे लग रहे हैं, सब जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही है, मानो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने के भौतिक काम के लिए तपस्या की हो। लोग बहुत करते हैं ना किसी चीज की प्राप्ति के लिए, जैसे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कैसे भयंकर तपस्या की, बहुत तपस्या की, एक पैर दोनों पैर पे खड़े होकर, फिर एक पैर वो भी अंगूठों पे खड़े होकर, हाथ ऊपर करके आसमान की ओर, सूरज की ओर देखना, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे तपस्या करने से हिरण्यकश्यप दुबले पतले हो गए, और यहां तक कि उनका सारा जो शरीर है वही खत्म हो गया, केवल हड्डियां रह गईं। क्योंकि वो सत्यु का समय था, इसलिए उस समय प्राण हड्डियों में चलता था, इसलिए वो जी पाए। कलयुग में प्राण अन्न में होता है, इसलिए अन्न के बिना आदमी रह नहीं सकता। तो हिरण्यकश्यप ने जब ऐसी तपस्या की तो उनका शरीर कैसे हो गया, बिल्कुल दुबला पतला शरीर प्राय खत्म हो गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और अपने कमंडलू से जल छिड़क दिया हिरण्यकश्यप के ऊपर, तो शरीर कैसा बन गया, तगड़ा बन गया, हृष्ट पुष्ट, तेजस्वी, प्रकाशमान, सुंदर, एक युवक का शरीर मिल गया हिरण्यकश्यप को। और इतना मजबूत, बिजली की तरह मजबूत। तो ठीक उसी तरह से शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि पृथ्वी माता गर्मी के मौसम में बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन अब वर्षा ऋतु में जब बारिश आ गई, सब हरियाली सब जगह दिखाई पड़ी। ऐसे लग रहा था कि अभी ऐसे व्यक्ति जिसने तपस्या की है कोई भौतिक चीज के लिए, वो भौतिक फल प्राप्त करके फिर से वो हृष्ट पुष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी माता लग रही थी। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि तपस्या वैसे तो किसी भौतिक उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए, केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धयेद् यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। ऋषभदेव महाराज श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि तपस्या हमारी दिव्य होनी चाहिए, जिससे कि हम ब्रह्म सुख को, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकें। तो आगे शुकदेव गोस्वामी अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं वृंदावन की परिस्थिति। देखते हैं कि जब संध्या काल आ जाता है, सूर्यास्त का समय आ जाता है और अंधकार आ जाता है, उस समय तारे चांद नहीं दिखाई पड़ते, उसके बदले क्या दिखाई पड़ता है, किसकी रोशनी दिखाई पड़ती है, जुगनू की, ग्लोवर्म, जुगनू फायरफ्लाई, जिसमें वो छोटे छोटे पक्षी होते, छोटे कीड़े होते हैं जो उड़ते हैं, जो प्रकाश देते हैं, उनके अंदर ही कोई टॉर्च रहता है जिससे वो अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं। तो रोशनी इन जुगनुओं की आती है, ये सब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तारे चांद वो सब दिखाई नहीं पड़ते। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ये बरसात का मौसम, मतलब ये जो बादल हैं, वो कलयुग के बराबर हैं। जो चांद तारे हैं वो वेदों के ज्ञान के बराबर है, और ये जो जुगनू है ना, ये सारे झूठे और नास्तिकवाद के तर्क हैं। सब सब अलग अलग वाद, नास्तिकवाद, भोगवाद, बौद्धवाद, ये वाद, वो वाद, सब गलत वाद, जो कि वेदों के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो इसका मतलब क्या है, ये उपमा क्या है, कि जिस तरह से बादल जो असली प्रकाश है तारों का, चांद का, उसको ढक देती है, और ढकने की वजह से जब अंधकार हो जाता है तो छोटे छोटे जुगनू ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, वही प्रकाश देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कलयुग जब आता है तो कलयुग में सच्चे वेदों का ज्ञान ढक जाता है कलयुग के प्रभाव से, और फिर जो छोटे छोटे गलत गलत सब फिलॉसफी दर्शन होते हैं, वाद होते हैं, वो उनका प्राधान्य हो जाता है और लोग उनको मानने लगते हैं, और लोग इन्हीं को सच सत्य मानते हैं, असली जो चीज है उसको भूल जाते हैं, उसको झूठा मानते हैं, उसके ज्ञान को, वेदों को, ज्ञान को कोई देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, लेकिन इन्हीं चीजों को सच्चा मानकर बैठते हैं। है ना सुंदर बात, सुंदर दृष्टांत है ना। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आजकल के जमाने में, कलयुग में, सच्चा ज्ञान जो है वो आधुनिक भौतिक प्रगति के बादल से ढक गया है। आजकल लोग इस भौतिक प्रगति से और खास करके इस तकनीकी ज्ञान से, विज्ञान से इतने प्रभावित हो गए हैं कि उनके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आकर्षण और श्रद्धा उत्पन्न होता ही नहीं है। आजकल के आधुनिक प्रगति ने, भौतिक प्रगति ने लोगों को केवल संशयात्मा बना दिया है। और गीता में भगवान क्या कहते हैं संशयात्मा के बारे में? संशयात्मा विनश्यति। संशयात्माओं का नाश तो होना ही है। इसलिए लोगों ने, कलयुग ने लोगों को बिल्कुल नास्तिक बना दिया है और संशयात्मा बना दिया है। सच्चे वेदों का ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन और एक सुंदर बात बताते हैं प्रभुपाद। देखिए यह है आचार्यों की टीका। जब शास्त्र में सुखदेव गोस्वामी कोई चीज बताते हैं तो आचार्यों की टीका से और भी वो मधुर हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत तो वेद व्यास ने कहा था सुखदेव गोस्वामी को, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने इसको आगे महाराज परीक्षित को जब कहा तो उसका रस बढ़ाकर कहा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने उसको चखा था। उसको चखने के बाद और अपने साक्षात्कार सहित उसको प्रस्तुत किया था। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संवितम पिबत भागवतम रसम आलयम अहो महो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद भागवत का दूसरा ही श्लोक इसमें बताया जाता है। निगम, ये जो वेद है निगम, कल्पतरु, ये कल्पतरु के बराबर है। और ये कहां से आया है? सुख मुखाद, सुखदेव के मुखारविंद से आया है। अमृत द्रव संयुतम, एक ऐसे अमृत रूपी ज्ञान है जिसको स्वीकार करना, ग्रहण करना बहुत आसान है। जैसे अगर कोई आहार है जिसको हम खाना चाहते हैं, अगर बहुत कड़क है तो हम उसको खा नहीं सकते, बहुत खट्टा है, बहुत कड़वा है, नहीं खा सकते। लेकिन इस श्रीमद् भागवत का संदेश अमृत के समान मीठा है और ऐसे है जैसे कि आसानी आप इसको निगल सकते हैं। इसको ज्यादा कड़क तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शुष्क ज्ञान होता है वो ऐसे कड़क चीज के बारे में जिसको काटते काटते कहीं आपका दांत ही ना टूट जाए और जिसमें कोई रस भी नहीं है। जैसे कोई बांबू को चबाने जाए तो बांबू को चबाकर सोचे कि उससे कोई रस मिले, कोई रस मिल सकता है? नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति गन्ने का गन्ना ले ले और गन्ने को में से रस निकालकर रस का पान किए तो फिर आनंद आएगा। तो श्रीमद् भागवत वैसे रस के समान है और ये रस बढ़ा है। क्यों? क्योंकि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसलिए वेदव्यास जी बता रहे पिबत भागवतम रसम आलयम, ये सबके लिए अच्छा है, इसलिए ये रस पीजिए। तो जैसे जैसे आचार्य श्रीमद् भागवत को देखते वो रस बढ़ा के परंपरा में भेजते हैं, ठीक उसी तरह से प्रभुपाद जी भी इस श्लोक के रस को बढ़ाते हैं। और वो क्या कहते हैं? ये सही है कि बरसात के समय बादल ढक जाते हैं, ढक देते हैं तारों को और चांद को। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है ना, बरसात के मौसम में भी सूरज बाहर निकलता है ना। देखिए अभी है ना, ये तो वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन बीच बीच में थोड़े समय के लिए बादल हट जाते हैं और सूरज का प्रकाश आ जाता है या चांद तारों का प्रकाश आ जाता है, थोड़े समय के लिए भले। उसी तरह से यह कलयुग की अवधि 432,000 है। 432,000 में से 10,000 वर्ष बादल थोड़े हट जाते हैं। ये 10,000 वर्ष क्या है? स्वर्ण युग, कलयुग के भीतर स्वर्ण युग। कैसे उत्पन्न होता है यह स्वर्ण युग? चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से। तो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन ने इस कलयुग में स्वर्ण युग बनाया है 10,000 साल का। तो जैसे कि कभी कभी बरसात के मौसम में बादल हट जाते हैं और चांद तारों की रोशनी दिखाई पड़ती है और उस समय फिर ये जुगनू उगनू कोई काम के नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से हालांकि कलयुग में घोर अज्ञान का अंधकार है और सारा वैदिक ज्ञान ढका हुआ है इस अंधकार में, फिर भी इस अंधकार के बीच अचानक ऐसे महाप्रभु का आंदोलन जैसे आ जाता है और 10,000 वर्ष फिर ये झूठे जो सिद्धांत हैं, नास्तिकवाद, भोगवाद, बौद्धवाद इत्यादि हैं, वो फिर से ढक जाएंगे और सच्चा वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो अभी बादल कलयुग के हट रहे हैं, हालांकि कलयुग अभी अभी शुरू हुआ है 5000 वर्ष पूर्व, लेकिन अभी बादल हिल रहे हैं, पूरी तरह से हिले नहीं हैं। इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन अभी पूरी तरह से जम के बैठा नहीं है पृथ्वी में, अभी फैल रहा है, अभी और बढ़ रहा है। अब आगे चल के थोड़े सालों में ये जम जाएगा, अपने जो जड़ हैं वो सारे पृथ्वी में जमा लेगा। फिर पूरी तरह से हम समझ सकते हैं कि 10,000 साल तक सारे कलयुग के बादल हट जाएंगे और कृष्ण भक्ति का प्रकाश सब जगह फैलेगा। है ना, कितना सुंदर दृष्टांत उपमा। फिर आगे शुकदेव गोस्वामी अपने दिव्य नेत्र जगह जगह फैला रहे हैं, अभी ऊपर बादलों से हटाकर अभी नीचे जमीन पे लाते हैं। जमीन में सबसे पहले वो किस चीज को देखते हैं? मेंढकों को देखते हैं। मेंढक जब बादलों की आवाज सुनते हैं तो तुरंत वो अपनी आवाज शुरू कर देते हैं, उनको खुशी होती है। मेंढकों को वर्षा ऋतु पसंद है क्योंकि पानी आता है, तालाब भर जाते हैं, वहां वो अपनी आवाज कर करके फिर वो खुश रह जाते हैं वहां पर। तो ये मेंढकों का आवाज करना बादलों के गरजने के सुनने पर वो ऐसा है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मणों के एक पाठशाला में जो सुबह के कार्य शांति से कर रहे होते हैं, लेकिन जब गुरु बुलाते हैं आओ वेदों के मंत्रों का पाठ करो तो अपना वो मंत्रों का पाठ शुरू कर देते हैं। सब साथ में बहुत संगीतमय रूप में अपने मंत्रों का पाठ करते हैं, तो फिर वो एक साथ में सब बोलने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये मेंढक हैं। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं और ज्यादा रस देते हैं, वो बताते हैं कि किसी पाठशाला में, गुरुकुल में या कहीं भी जो ब्रह्मचारी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको वैसे तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है सुबह, लेकिन अपने आप से नहीं उठते हैं। कोई घंटी बजाने पड़ता है, कोई बेल बजाना पड़ता है, किसी को आके कुछ करना पड़ता है, तब उठ जाते हैं। और तब अज्ञान के अंधकार से उठकर फिर भगवान का नाम इत्यादि लेना शुरू करते हैं। और एक उदाहरण श्री प्रभुपाद जी देते हैं, वो कहते हैं कि कलयुग में अंधकार है और यह आध्यात्मिक दृष्टि से सभी लोग सोए हुए हैं, माया के गोदी में, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माया के गोदी में सब लोग सोए हुए हैं। लेकिन एक महान आचार्य कोई आते हैं, महान आचार्य आकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं और सारे सोए हुए जीवों को जागृत करते हैं। जीव जागो गोरा चंद्र बोले। तो प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं, तो प्रभुपाद जी ही वो स्वयं एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कि कलयुग के सोए हुए जीवों को आकर जगा दिया है। पृथ्वी भर में, देश देश में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन फैलाया हुआ है। और फिर आगे शुकदेव गोस्वामी क्या देखते हैं कि छोटे छोटे तो झरने वगैरह हैं, जो स्ट्रीम्स हैं पानी के, छोटे छोटे नदियां हैं जो कि पहले ग्रीष्म ऋतु में सूख गई थी, अभी भर जाती है पानी से और अपना रास्ता बदल देती है। ठीक उसी तरह से कि जैसे एक व्यक्ति जो अपने इंद्रियों के वश में है, उसकी संपत्ति, उसका धन इत्यादि बढ़ जाता है, उसे थोड़ा थोड़ी रोशनी मिलती है, सारा उसका नाम रोशन हो जाता है समाज में, बहुत बड़ा आदमी है, ये है वो है, और बाद में उसके भाग्य के अनुसार सब खत्म हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये छोटे छोटे नदियां हैं। और आगे ये पृथ्वी की क्या अवस्था है? हरियाली ही हरियाली बरसात में, या खास करके बेलगाम में भी हम देखते हैं, सब जगह अभी पीछे यहां देख सकते हैं कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लगता है सब जगह हरी भरी खेत देखकर। जहां बेलगाम से बाहर भी जाते हैं या कैंप एरिया में भी, यहां से खानापुर जाते हैं, कितना सुंदर लगता है सब जगह। तो ऐसे लगता है कि मानो पृथ्वी माता खिल गई है। और हरियाली के साथ साथ हमें लाल रंग के थोड़े जंतु भी दिखाई पड़ते हैं जिनको इंद्रगोप कहते हैं, और सफेद रंग के मशरूम, मशरूम को क्या कहते हैं हिंदी में, जो झाड़ के छतरी के बराबर होते हैं, छोटे छोटे जमीन में आते हैं, छत्र, फूल छत्र, भू छत्र, ठीक है, तो ये भी आते हैं। तो तीनों को, तीनों का जो मिश्रण है, कॉम्बिनेशन, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कि एक राजा के सेना का परेड जब चल रहा है, रंग बिरंगी, वो अपने अपने वस्त्रों में चलते हैं, यूनिफॉर्म में चलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में वृंदावन में पृथ्वी माता ऐसी दिखाई पड़ती हैं। और जो खेत हैं वर्षा ऋतु में, वो किसको आनंद देते हैं वर्षा ऋतु में? किसान को, बराबर, कृषक को आनंद देते हैं, क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया होता है, उसने बीज बोया होता है, और वो देख रहा है कि सब अभी उग रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो किसान को बहुत आनंद होता है वर्षा ऋतु में खेतों का उत्पादन देखकर। लेकिन जो लोग खेती नहीं करते हैं या जो खेती को तुच्छ समझते हैं, वो लोग बड़े उदास हो जाते हैं। यह तात्पर्य लिखा हुआ है कि शहर के लोग बारिश आने से उदास हो जाते हैं, बारिश को कोसते हैं, अरे कितना बारिश है, बाहर नहीं जा सकते हैं, गीला हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, बराबर है ना। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि बारिश नहीं होगी तो अनाज का उत्पादन कैसे होगा, और अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो वो खाएंगे क्या। तो आजकल ऐसी एक सिस्टम, ऐसे प्रथा शुरू हो गई है कि जो कृषि है उसको एक तुच्छ बात समझना। गांव में भी लोग आजकल आकर्षित हो रहे हैं फैक्ट्री में, शहर में जाना, फैक्ट्री में जाकर काम करना, शहर में आना, अपना कृषि छोड़ देना। किसी के पास जमीन हो भी लेकिन फिर भी कृषि नहीं करेंगे, किसी के फैक्ट्री में जाके किसी का नौकर बनेंगे लेकिन खुद का मालिक होकर कृषि नहीं करेंगे। और सब जगह किसान को इतना अच्छा महत्वपूर्ण स्थान समाज में नहीं दिया जाता है, खास करके पश्चिम देशों में, जैसे अमेरिका में, अगर कोई बुद्धू आदमी है तो कहेंगे यार ये तो किसान जैसा है। मतलब आजकल पश्चिम देशों में किसान का स्तर इतना निम्न हो गया है कि लोग सोचते हैं कि कोई सूट टाई पहनकर बड़े ऑफिस में बैठे तो वही श्रेष्ठ आदमी है। लेकिन कोई वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करे, अनाज का उत्पादन करना, तो उसको महत्व नहीं दिया जाता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि सारे पृथ्वी भर में कृत्रिम कमियां हो जाती हैं, आर्टिफिशियल जो चीजों की कमियां, अनाज की कमी। अमेरिका में हर साल या कम से कम कई बार ऐसे होता है कि वो बड़ी मात्रा में अनाज केवल फेंक देते हैं सागर में, पानी में। क्यों? क्योंकि अगर उतना अनाज वो लोग बेचेंगे मार्केट में तो अनाज की कीमत बहुत कम हो जाएगी। तो अनाज की कीमत को बनाए रखने के लिए, ऊंचा रखने के लिए, वो ज्यादा सप्लाई नहीं करते हैं मार्केट में और सारे अनाज को फेंक देते हैं। अरे गरीब देशों में बांट दिया होता है, इतने गरीब लोग हैं जो भूखे हैं, उनको उनको दे दिया होता तो कितना अच्छा होता, मुफ्त भी दे दिया होता, लेकिन नहीं, वो पानी में फेंकेंगे लेकिन बांटेंगे नहीं। और इतना ही नहीं, अमेरिका में वो किसानों को कभी कभी पैसा देते हैं अनाज नहीं करने के लिए कि आप कृषि मत करो, ये साल आपको हम इतना पैसा देंगे, आपको छुट्टी में जाओ या इधर उधर घूम के आओ, ये पैसा देते हैं उनको, उत्पादन मत करो। कितनी विचित्र बात है ना, कैसे कैसे कलयुग के लक्षण हम दिखाई पड़ देखते रहे हैं। तो ये सब लोग भगवान के कानून को, भगवान की पद्धति को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ऐसे कृत्रिम अवस्था में समाज को ले जा रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि जो भी जलचर प्राणी हैं और जमीन में रहने वाले भी प्राणी जो हैं, वो अभी अभी आए हुए बारिश के पानी का फायदा लेते हैं और बहुत सुंदर और आकर्षक लगते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करके बहुत सुंदर दिखने लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे स्वयं इस बात का अनुभव है जब मैं पहले अमेरिका आया तो ये सब लड़के और लड़कियां आया करते थे मेरे पास, कितने उदास दिखते थे और ये सब गंदे थे। हालांकि स्वाभाविक तौर से ये सुंदर हैं, लेकिन इनके नाना प्रकार के गलत आदतों से उनके रहन सहन का ढंग इतना गलत था कि इनका सौंदर्य ढक गया था, बड़े उदास दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जब अब इन्होंने भक्ति मार्ग को स्वीकार किया है, इतने सुंदर लग रहे हैं, तेजस्वी लग रहे हैं, प्रकाशमान लग रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि जब ये लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं जैसे गहरे वस्त्र, गहरे रंग के वस्त्र हैं, कंठी माला और कपाल में तिलक और भगवान की माला लेकर जाप करके चलते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये लोग साक्षात वैकुंठ से नीचे आए हो। तो इस तरह से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं वर्षा ऋतु के समय में। और फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जैसे नदियां सागर को जब मिल जाती हैं पवन के बल से वो विचलित हो जाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि एक कच्चा योगी जो है वो काम के हवा से उसका मन विचलित हो जाता है। और जब वर्षा आती है तो तेजी से वर्षा आकर पहाड़ों को भी टकराती है, लेकिन पहाड़ हिलते नहीं हैं। पहाड़ इस वर्षा को आसानी से सहन कर सकते हैं। जैसे कि जो भगवान के भक्त होते हैं, नाना प्रकार के कष्टों के में होते हुए भी वो शांत रहते हैं, और यही भक्तों का आभूषण है। कठिनाइयों के बीच में जब भक्त स्थिर रहते हैं, मन में शांत रहते हैं, अपनी भक्ति को छोड़ते नहीं हैं, तो भगवान की आंखों में वो भक्त बहुत सुंदर हो जाते हैं। ऐसे वैष्णव गुण जैसे कि सहनशीलता, ये भक्त के आभूषण होते हैं जिनको देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आगे चल के सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि बारिश के समय में रास्ते साफ नहीं किए जा सकते, और गांव में जो रास्ते वगैरह हैं वो ढक जाते हैं, क्योंकि उन पे घास उग जाता है, मिट्टी फैल जाती है, कीचड़ हो जाता है, तो रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से कि जैसे कोई अगर ऐसे शास्त्र हो जिनको ब्राह्मण पढ़ना बंद कर दे और फिर वो शास्त्र लोगों को पता नहीं चलता कि इसमें क्या ज्ञान है, उस शास्त्र का ज्ञान ढक जाता है, ठीक उसी तरह से यहां वर्षा ऋतु में वृंदावन के जो रास्ते हैं वो भी ढक जाते हैं। फिर से सुखदेव गोस्वामी अपनी नजर ऊपर ले जाते हैं बादलों की ओर और कहते हैं कि देखो बादल, जैसे कि हमने पहले वर्णन किया है, ये कितने उदार एक योग्य व्यक्ति के बराबर है जो सबको पर्याप्त मात्रा में आश्रय देते हैं, पोषण देते हैं। जैसे कि संसार में कोई व्यक्ति है अपने कुटुंब का, रिश्तेदारों का पालन पोषण करता है, और एक कोई व्यापारी है जिसके कारखाना है, कितने सारे कर्मचारियों को वो आश्रय देता है, वो अपनी आमदनी मिला सकते हैं, तो ये बादल ऐसे हैं, बड़े हृदय से उदार हैं, बस अपना देते रहते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। लेकिन बिजली ऐसी नहीं है, बिजली एक बादल से दूसरे बादल में जाती है, दूसरे से तीसरे। जैसे कि एक स्त्री हो जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जो एक पुरुष से दूसरे पुरुष में जाती है, दूसरे से तीसरे, चंचल, उसी तरह से ये जो बिजली है ये चंचल है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाती है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में बहुत तकलीफें आ सकती हैं, आएंगी, आ सकती है नहीं, आएंगी, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो सहन करना चाहिए। और खास करके प्रभुपाद जी बताते हैं पति पत्नी के बीच में कई बार झगड़े हो सकते हैं, लेकिन चाणक्य पंडित बताते हैं कि पति पत्नी में जो वाद होता है उसको कभी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, भूल जाना चाहिए, क्योंकि आज झगड़ रहे हैं कल भूल जाएंगे। और अगर बात बढ़ भी जाए तो पति पत्नी को समझना चाहिए कि हमें आपस में मिलजुल कर किसी न किसी तरह से रहना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि आजकल हो रहा है घटस्पद डाइवोर्स, कुछ भी छोटी बहुत थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देते हैं। यही चल रहा है पश्चिम देशों में, और भारतवर्ष में भी ये प्रथा अभी बढ़ती जा रही है। तो हमें कैसे बनना चाहिए? बादल की तरह है, बिजली की तरह नहीं। फिर आकाश में देखते देखते आगे अभी सुखदेव गोस्वामी इंद्रधनुष को देख रहे हैं। इंद्रधनुष आप जानते हैं ना, रेनबो, इंद्र का धनुष, क्योंकि इंद्र तो वर्षा के देवता हैं और उनका यह धनुष है। लेकिन यह धनुष की विशेषता मालूम है आपको? आपने बाण को देखा है ना, धनुष को, धनुष का जो जो लकड़ी का भाग या जो लोहे का भाग होता है वो किस पे आधारित होता है? दोरी पे, तार होता है ना। अगर तार नहीं होगा तो धनुष रह पाएगा? नहीं। लेकिन इंद्रधनुष कैसा, इसके तार क्या है? कोई तार नहीं है, लेकिन केवल धनुष दिखाई पड़ता है। तो ये वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ने वाला सुंदर इंद्रधनुष जिसका कोई तार नहीं है, वो भगवान के प्राकट्य के बराबर है या भगवान के समान है। क्योंकि साधारण व्यक्ति जो होता है वो भौतिक गुणों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर आधारित होता है, लेकिन भगवान इस भौतिक गुणों से स्वतंत्र हैं, निर्भर नहीं हैं। भगवान तीन गुणों के परे हैं। एक साधारण जो धनुष होता है वो तीर के ऊपर आधारित होता है, लेकिन इंद्रधनुष नहीं। एक साधारण व्यक्ति भौतिक प्रकृति के ऊपर अधीन होता है, लेकिन भगवान नहीं, भगवान इससे स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए, हर बात में जो भी सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं निसर्ग में, किसी न किसी तरह से कोई आध्यात्मिक सिद्धांत से या भगवान से उसको जोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से इनके पद चिन्हों में चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब भी हम कुछ देखते हैं बाहर, ज्यादा देखना नहीं चाहिए, लेकिन देखे बिना हम कैसे जा सकते हैं बाहर? तो जितना भी थोड़ा कुछ दिखाई पड़ता है हमें उससे शास्त्रों से जोड़ लेना चाहिए। जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जो हमने सुना है, तुरंत समझ लेना चाहिए कि देखो ये शास्त्रों में ऐसे ऐसे कहा है। तो इस प्रकार से करने से हमारी चेतना और ज्यादा शास्त्रों में लग जाएगी। आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि बरसात के मौसम में, खास करके वृंदावन में देख रहे हैं कि घने बादल हैं रात के समय, और चांद की रोशनी आ रही है, पूर्णिमा की रात भी हो, लेकिन फिर भी चांद की रोशनी बादलों को पार करके नहीं आ सकती है। बादल जो हैं चांद के रोशनी को ढक रही हैं, लेकिन यही बादल जो कि चांद के रोशनी को ढक रही हैं, खुद वो उनको रोशनी आ रही है बादल से, खुद वो ज्वलित हो गई हैं चांद की रोशनी से। स्वयं जो बादल अंधकार में हैं, चांद को ढक रही हैं, लेकिन बादल प्रकाशमान हो गए हैं चांद की रोशनी से। ठीक उसी तरह से कि जैसे मिथ्या अहंकार आत्मा को ढक लेता है, क्या मिथ्या अहंकार आत्मा के सिवाय टिक सकता है, रह सकता है? नहीं। लेकिन आत्मा को ढक रहा है मिथ्या अहंकार, लेकिन आत्मा की वजह से ही मिथ्या अहंकार टिक सकता है। मिथ्या अहंकार में आदमी सोचने लगता है, उसकी चेतना होती है। अगर आत्मा नहीं होता तो मिथ्या अहंकार कैसे हो सकता? तो मिथ्या अहंकार आत्मा को ढक देती है, लेकिन आत्मा से ही प्रकाशित होती है। यह सुंदर बात है, कितना सुंदर दृष्टांत है इसके। ये बहुत सोचने लायक बात है। इससे हम समझ सकते हैं कि सच्ची जो चेतना है हमारी, वो आत्मा की चेतना है, आध्यात्मिक चेतना। जो जब आध्यात्मिक चेतना मिथ्या अहंकार के माध्यम से प्रकाशित होती है, तो वो एक उसका क्या कहते हैं, एक विकृत रूप है, डल रिफ्लेक्शन जो बोलते हैं, विकृत प्रतिबिंब उसका है, इसे ही प्रकाशित हो रहे हैं। फिर से सुखदेव गोस्वामी अपनी दृष्टि नीचे जमीन पर ला रहे हैं और मोरों को आनंदित होकर नाचते हुए देख रहे हैं। बरसात के मौसम में मोर बहुत खुश हो जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में उनको बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही बरसात के आने का समय हो जाता है, बादल आने लगते हैं, तो मोर इतने खुश हो जाते हैं कि नाचने लग जाते हैं। जैसे कि यह भी एक सुंदर उदाहरण दिया शुकदेव गोस्वामी, जैसे कि कोई गृहस्थ जो कि अपनी पारिवारिक समस्याओं से बहुत उलझ गया है, वो एक भक्त को अपने घर में बुलाकर कितना खुश हो जाता है, तो ठीक उसी तरह से जो मोर होते हैं ग्रीष्म ऋतु में बड़े दुखी रहते हैं, लेकिन बारिश को देखकर हाँ कितने खुश हो जाते हैं। सही बात है ना, गृहस्थ आश्रम में परेशानी है कि नहीं, लेकिन जब भक्तों को अपने घर में बुलाते हैं, भक्त कोई घर में आते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, सारे जो त्रिविध ताप है वो सब भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो अमेरिकन यूरोपियन लड़के लड़कियां हैं जो पहले उतने उदास थे, लेकिन अब भक्तों का संग मिल गया उनको और मोर की तरह आनंदित होकर नाच रहे हैं, देखो कीर्तन में तो भक्ति में आने से, भक्तों का संग मिलने से कितना लाभ होता है देखिए। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि यहां वो देख रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो भी अभी प्राय झूम रहे हैं आनंद से, वो भी हृष्ट पुष्ट हो गए हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ये पेड़ बिल्कुल सूख गए थे, कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, कुछ नहीं, और अब हरे भरे हो गए, पेड़ों में फल फूल सब जगह पर्याप्त मात्रा में चल रहे हैं, उसके पत्ते भी कितने हरे भरे लग रहे हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति तपस्या करता है, पतला दुबला पतला हो जाता है, लेकिन तपस्या समाप्त करने के बाद फिर से वो हृष्ट पुष्ट हो जाता है। फिर और एक पक्षियों को देखने लगते हैं, सारस पक्षी को, सारस जानते हैं ना, क्रेन है। ये सारस पक्षी कहां रहते हैं, तालाब में, तालाब के तट पर, तालाब में कभी तैरते हैं कभी तट में आकर रहते हैं, लेकिन उन्होंने देखा, सुखदेव गोस्वामी देखते हैं कि वृंदावन के या कहीं के भी जो सारस होते हैं बरसात के मौसम में फिर भी वो तालाब के तट पर रहते हैं, हालांकि तालाब के तट में बहुत कष्ट आता है। किस तरह के कष्ट आते हैं तालाब के तट पर, जैसे कि वहां पर मिट्टी कीचड़ बहुत हो जाता है, कीचड़ के साथ साथ वहां पर नाना प्रकार के कांटे वगैरह वहां पर आने लगते हैं, और वहां पर नाना प्रकार के कचरा वगैरह अटक जाता है, तो तालाब का तट जो है बरसात के मौसम में कोई अच्छा स्थान नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो सारस हैं वो तालाब के तट को छोड़ना नहीं चाहते, कष्ट सहन करते हैं लेकिन वहीं पर रह जाते हैं। ठीक उसी तरह से कि जैसे भौतिकवादी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति हमेशा घर में ही पड़े रहते हैं बुढ़ापे तक, हालांकि इतने कष्ट होते हैं, दिन रात तड़पते रहते, ये झगड़ा वो झगड़ा, ये तकलीफ वो तकलीफ, लेकिन घर को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, भगवान के शरण में लेने का नाम नहीं लेते हैं, मृत्यु तक आखिरी दम तक घर में पड़े रहेंगे टीवी के सामने। वो हम कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं आएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये गृहस्थ आश्रम अभी इतने साल हो गए, 50 साल हमने सेवा की सबके परिवार की, अभी हमें जाना चाहिए, भगवान के शरण जाना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, नहीं सोचेंगे, अंत तक वहीं पर रहेंगे, हालांकि इतने कष्ट होते हैं, ठीक उस सारस पक्षी की तरह। फिर सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, अभी खेतों में उनकी दृष्टि ले जाते हैं, कहते हैं कि जब वर्षा होने लगती है तो फिर पानी खेतों में बढ़ जाता है, और जो किसानों ने जो बंधारे वगैरह बनाए हुए होते हैं, छोटे छोटे सेतु वगैरह, पानी का जो प्रवाह है वो उनको तोड़ देता है और पानी आगे बहने लगता है। ठीक उस तरह से कि जैसे कलयुग में नास्तिकवाद और ऐसे झूठे जो वाद हैं, दर्शन हैं, उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि सच्चे वैदिक ज्ञान के ऊपर आधारित जो सिद्धांत हैं उनको तोड़ देते हैं, उनको साइड में कर देते हैं, उनको ढक देते हैं, और ये झूठे जो सिद्धांत हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। कल किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो, भगवान नहीं है, भगवान केवल प्रकाश है, आप भगवान हम भगवान, सब नाना प्रकार के अलग अलग सिद्धांत प्रकट होने लगते हैं। और आगे सुखदेव गोस्वामी फिर बताते हैं कि जो बादल हैं पवन से प्रेरित होकर इधर उधर जाकर सारे प्राणियों को पर्याप्त मात्रा में पानी प्रदान करते हैं, ठीक उसी तरह से कि जैसे एक राजा ब्राह्मणों से प्रेरित होकर ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त करके उसे पता चलता है कि मेरा कर्तव्य होता है दान देना, फिर खुले हृदय से वो प्रजा को दान देता है, तो बादल भी उस राजा के बराबर हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वृंदावन के जो वन हैं वो खजूर के पेड़ से, जंबू के पेड़ फलों से सुशोभित होने लगा। नाना प्रकार के फल फूल वहां खिल रहे थे वृंदावन में, जंगल में, और कृष्ण बलराम वहां उस वन में प्रवेश करने लगे वर्षा ऋतु के समय लीला का आनंद लेने के लिए। उस समय जो गाय हैं भगवान के, उनके जो स्तन हैं दूध से इतने भर गए थे, इतने भारी हो गए थे कि वो धीरे धीरे चल रहे थे गाय, इतने वजनदार उनके स्तन हो गए थे। और फिर कृष्ण भगवान ने उनको देखा और हर एक गाय को अपने अपने नाम से पुकारा, और सारे गायों ने जो देखा कि कृष्ण बुला रहे हैं तो दौड़ते हुए, जितना वो दौड़ सके उतने दौड़ते दौड़ते वो कृष्ण के पास आए और कृष्ण को चाटने लगे, क्योंकि कृष्ण अब ये जो गाय हैं अभी बड़े हृष्ट पुष्ट हो गए थे, बरसात में सब जगह अभी घास उगने लगता है और इस हरियाली में गायों को बहुत आनंद आता है। हम देखते हैं हमारे गौशाला में भी बरसात के समय कभी कभी उनको अंदर बांधना पड़ता है क्योंकि वो भीगना पसंद नहीं करते, लेकिन जब बारिश बंद हो जाती है और बाहर हरियाली होती है और गायों को हम बाहर छोड़ते हैं तो भक्त वर्णन कर रहे थे कि जैसे गाय बाहर आए उस हरियाली में तो आनंद से पागल हो गए, नाचने लगे सारे गाय। सही बात है श्रीधर, श्रीधर भी थे, गायों को छोड़ा था श्रीधर ने, गाय बिल्कुल नाचने लगे आनंद से। इतना आनंद लगा उनको हरी भरी खेत को देखकर, खाना दूर रह गया, खाना भूल गए, केवल आनंद हो गया उनको। तो गाय वर्षा ऋतु में भी ये हरियाली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और उस समय वृंदावन में भी सारे पेड़ों में से मधु वगैरह निकल रहा था, सब जगह झरने थी, जगह जगह ये गुफाएं हुआ करती थी, और कृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ इन गुफों के अंदर जाकर वहां पर कंदमूल इत्यादि खाया करते थे। वहां कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट नहीं था कि वहां जाकर अचानक भूख लगी को पिज्जा खा लिया, डोसा खा लिया, नहीं। वृंदावन में क्या हुआ करता था, वृंदावन में भगवान कृष्ण और उनके मित्र कंदमूल को खाकर संतुष्ट रहा करते थे, और वृंदावन के कंदमूल इतने स्वादिष्ट, और वहां पर बरसात के समय ये कंदमूल ज्यादा निकलते हैं और बड़े नरम रहते हैं, खाने के लिए बड़े योग्य रहते हैं। तो कृष्ण भगवान का आहार ये हुआ करता था जंगल में, और फिर वो उस गुफे के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करते कि कब बारिश बंद हो जाएगी फिर हम बाहर जाएंगे। कभी कभी ऐसे विशाल वृक्ष होते थे और वृक्ष के अंदर ही एक खोखला जैसे जगह हो जाता था, कभी पुराने वृक्ष हो जाते थे तो उनके अंदर जाके मित्रों के साथ में बैठ जाते थे कृष्ण भगवान, बरसात को रुकने की प्रतीक्षा करते थे, और फिर भगवान कृष्ण अपना प्रसाद लेते, भोजन लेते। क्या लेते भगवान? उबला हुआ चावल और उसके साथ में दही, सरल भोजन। देखिए ग्वाल बाल होने के नाते भगवान श्री कृष्ण ये पसंद करते थे। जब ब्रह्मा जी आए और जब ब्रह्म विमोहन लीला होनी थी उस समय भी भगवान ने बाएं हाथ में थोड़ा दही चावल लिया था और एक हाथ में थोड़े बहुत फल के टुकड़े जो भी उसमें मिलाए हुए थे, और जब ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान ये लेकर, दही चावल लेकर चल रहे हैं अपने ग्वाल बालों के मित्रों के साथ में, जैसे कि साधारण कोई बच्चा ऐसे खा रहा हो। तो ये है भगवान का आहार। और फिर वो एक बड़े पत्थर के सामने बैठकर वो प्रसाद ग्रहण करते थे। और जैसे प्रसाद ग्रहण करने के बाद कृष्ण भगवान बैठ जाते तो पास में गाय बैल जो हैं वो चर रहे थे, उनको बैठकर देखते हैं, बड़े आनंद से भगवान देखते उनको। गाय बैलों को चरते हुए देखने से भगवान को बहुत आनंद आता था। और गाय बैल कैसे चर रहे थे? पहली बात तो ये है कि उन्होंने घास तो खा लिया था बहुत कुछ, इसलिए थोड़ा बहुत पेट भर गया था, और इसके अलावा दूध इतना था कि शरीर भारी हो गया था। तो सारे गाय जमीन के ऊपर बैठ गए थे आराम से, और आंखें बंद की थी उन्होंने, और चबा रहे थे घास को। जैसा आप जानते हैं कि गाय के कई पेट होते हैं अंदर, और जब गाय चबाकर घास को खाती है तो अपने पेट में भेजती है, और फिर उस पेट से जब खाने को चारा नहीं होता है फिर से बाहर मुंह में लाकर उसको चबाते हैं। ऐसे ही बस पहले घास को अंदर भेज देते हैं वो पेट में, फिर अच्छी तरह से चबाने के लिए फिर से उसको बाहर लाते हैं मुंह में, चबाकर फिर उसको ले जाते हैं। तो ऐसे गाय यहां बैठकर आंख बंद करके आनंद से चबाते जा रहे थे। आपको गाय को चबाते हुए देखा है ना, मुंह हिलाते हिलाते बैठे आराम से, कोई तनाव नहीं, आराम से जी रहे हैं, इसलिए उनको सतुगुणी कहते हैं। कितने सुखी नजर आते हैं। बस गाय को क्या चाहिए, केवल घास दीजिए, थोड़ा प्रेम दीजिए, और वो आपको अमृत देगी। क्या है वो अमृत? दूध। है कोई ऐसा प्राणी? प्रभुपाद जी बताया करते थे, हमारे वैज्ञानिकों ने कोई ऐसे मशीन ढूंढ निकाला है, एक कोने में आप घास घुसाओ दूसरे मशीन के बाहर से दूध आएगा, ऐसे कोई है मशीन? नहीं। बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं जिसमें आपने लोहा डाल दिया, ये डाल दिया, कुछ प्लास्टिक डाल दिया, बाहर कुछ और बड़ा मशीन, वॉशिंग मशीन आ गया, ठीक है, ऐसे सब चीजें होती हैं। लेकिन प्रकृति के देखो, ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसमें घास डालकर बाहर अमृत मिले दूध के रूप में, जिसका जो कि अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का, अपने शरीर का, मन का पोषण करे, जिसका पान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि मिले, जिससे कि घी जैसी वस्तु बने, जो जिससे कि हमारा आहार कितना शुद्ध और पौष्टिक और स्वादिष्ट हो जाता है, ये है गाय। तो गाय बैठकर वहां चबा रही थी और कृष्ण भगवान बड़े आनंद से उनको देख रहे थे। वैसे भगवान श्री कृष्ण ऐसे बैठे बैठे जब गायों को देख रहे थे, नैसर्ग प्रकृति का सौंदर्य भी देख रहे थे, वर्षा ऋतु का सौंदर्य देख रहे थे, और फिर उन्होंने वर्षा ऋतु को प्रणाम किया कि आपने सब कुछ मेरे लीलाओं के लिए इतना सुंदर बनाया है। जैसा हम पहले कह रहे थे, ये तो वास्तव में योग माया की व्यवस्था है, और योग माया ऐसे ऋतु की व्यवस्था करती हैं, वृंदावन धाम की व्यवस्था करती हैं, कि कृष्ण भगवान की लीला और भी अधिक सुमधुर हो जाए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वर्षा ऋतु में लीलाएं की हैं। और आगे आया शरद ऋतु, तो शरद ऋतु की चर्चा आज सुनना चाहते हैं या कल? संक्षेप में कल करेंगे, ठीक है। बारिश अभी वर्षा के ऋतु से, जो भी सुखदेव गोस्वामी की वाणी के ऋतु से अभी आप शायद संतुष्ट हो गए होंगे, तो कल हम शरद ऋतु का वर्णन आरंभ करेंगे संक्षेप में 10-15 मिनट में, और फिर उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करेंगे, वो है वेणु गीत। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही प्रिय है भक्तों का। गोपी गीत और वेणु गीत, ये दो अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण लीला की जय, वृंदावन के वर्षा ऋतु की जय, हरे कृष्ण। तो आपके कोई प्रश्न इत्यादि हैं? हाँ जी, ये है कि भगवान तीन गुणों के अधीन नहीं होते, तो आत्मा भी आध्यात्मिक है, आत्मा तीन गुणों के अधीन क्यों आती है? आप में से कोई जवाब देंगे? भगवान तीन गुणों के अधीन नहीं होते, लेकिन आत्मा तीन गुणों के अधीन हो जाती है, क्यों? ये कैसे संभव है? यह प्रश्न है, संभव कैसे है ये? जब भगवान नहीं आ सकते, नहीं आते हैं, तो जीव कैसे आ सकता है? हाँ, छोटी मात्रा, अणु मात्र, जीव अणु है और भगवान कृष्ण विभू हैं, भगवान अनंत हैं और जीव तो छोटा है, तटस्थ शक्ति, इसलिए किसी भी समय इस भौतिक प्रकृति के वश में आ सकता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूल जाने से जीव को क्या होता है, भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल कर जीव भोग की इच्छा करता है, फिर क्या होता है, माया। माया मतलब क्या है, तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण। माया देवी पास में खड़ी होती है, ये कृष्ण को भूल गया, भोग करना चाहता है, झपट के पकड़ लेती है, चलो इसको प्रभाव में करके वश में कर लिया, चलो अपना और एक शिकार हो गया। माया देवी शिकार करती रहती है, तीर माया देवी का तीर तैयार रहता है, इसलिए भक्तों को भी बहुत सावधान रहना पड़ता है। माया देवी तीर लेकर खींच कर तैयार है, कोई भी भक्त थोड़ी बहुत लापरवाही करता है, हरे कृष्ण महामंत्र करना भूल जाता है, भक्तों के संग में आना कम कर देता है, घर में जाकर टीवी चालू कर देता है, तो माया के तीर करके चालू हृदय में बैठ जाते हैं, फिर जीव फिर से माया के प्रभाव में आ जाता है, तीन गुणों के अधीन हो जाता है। है कि जब भगवान इतने छोटे थे तो वो भी माया के प्रभाव में नहीं आ गए, तो आत्मा के लिए कैसे ये संभव है। जब भगवान छोटे होते हैं और भगवान बड़े होते हैं, कोई फर्क है? हर अवस्था में भगवान भगवान ही है, चाहे वो नन्हे मुन्ने एक महीने के एक दिन के बाल कृष्ण क्यों ना हो, और चाहे वो 125 साल के उम्र वाले भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वो क्यों ना हो, दोनों कृष्ण एक ही है। दोनों के शक्ति में, बुद्धि में, किसी भी चीज में अंतर तनिक भी नहीं है। भगवान हर अवस्था में भगवान रहते हैं, ये है भगवान शब्द का मतलब। ठीक है, प्रश्न ये है कि पश्चिम देशों में लोग चार नियमों का भंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो वहां अनाज का उत्पादन ज्यादा कैसे हो रहा है, ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। अभी उनके पूर्व कर्मों का फल अभी वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पाप की पूंजी बढ़ती जाएगी, उनके गले में जो रस्सी है वो टाइट होती जा रही है, इसलिए धीरे 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 से माता प्रकृति देवी भी, भूमि देवी, ये सब कुछ धीरे धीरे से खींच लेंगी वापस। और कोई प्रश्न? प्रश्न ये है कि अभी 10,000 वर्ष चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलेगा, फिर 10,000 साल के बाद क्या होगा, फिर नास्तिकवाद वगैरह फिर से बढ़ जाएगा? हाँ, फिर तो ऐसे भयानक स्थिति होगी कि बस हमें सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में, इतना भयानक हो जाएगा। आज भी भयानक है, कोई कम भयानक नहीं है अभी भी, लेकिन आज इतना है तो 10,000 साल जब महाप्रभु का आंदोलन जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो 10,000 वर्ष ये स्वर्ण युग है कलयुग के भीतर, इसलिए हमें चाहिए कि इस आंदोलन का, इस समय का फायदा उठाएं। भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर है कि हमारा जन्म इस 10,000 वर्ष के बीच में हुआ, और वो भी पृथ्वी में, जबकि हम इस आंदोलन का फायदा उठा सके हैं। अभी अगर ये चांस मिस हो गया, न जाने अब अगली बार जन्म कब मिलेगा, कब होगा, कौन से लोक में, कौन से ग्रह में, किस योनि में, और उस समय हमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होने के लिए मौका मिलेगा ना मिलेगा नहीं मालूम। और वापस जब पृथ्वी में आएंगे तब कलयुग की क्या हालत होगी क्या जाने। इसलिए इसी जन्म में हमें शुद्ध भक्त होकर भगवान के धाम में लौट कर जाना है, समय नहीं है, इसी जन्म में अपन को निकल जाना है। दृढ़ता से हमें भक्ति करनी चाहिए। टीका टिप्पणी प्रश्न